हरे कृष्णा। तो आज एकादशी होने के नाते हम हर शनिवार का
जो प्रवचन होता है वो अंग्रेजी में नहीं करेंगे, भगवद गीता के ऊपर नहीं होगा, परंतु हर एकादशी के दिन जो महान वैष्णवों की कथा की जाती है वो कथा आज होगी। पिछले एकादशी को हमने पश्चिम भारत के महान श्री वैष्णव भक्त आलवारों की चर्चा आरंभ की थी। आपको याद होगा कि आलवार ये 12 संत थे, जिनमें से एक महिला भी थी, और द्वापर युग के अंत में और कली की शुरुआत में वो दक्षिण भारत में रहे और उच्च कोटि के भक्ति का प्रदर्शन करके और कई ऐसे सुंदर स्तोत्र प्रार्थनाएं हमारे लिए छोड़ के उन्होंने हमारे भक्ति की संस्कृति को और भी बहुत तीव्र और मीठा बना दिया है। इन आलवारों के बारे में श्रीमद् भागवत में भी भविष्यवाणी है, नाम से नहीं लेकिन लक्षणों से। और पिछली बार हम ये देख रहे थे कि कैसे भागवत के एकादश स्कंध के उस श्लोक से, उन 3 श्लोकों से हम कैसे जान सकते हैं कि ये श्लोक आलवारों के बारे में है। ये आलवार भगवान विष्णु के अलग अलग अंगों के अवतार माने जाते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में, और ये हालांकि अलग अलग समय पर हुए परंतु इनके प्रार्थनाओं में, स्तुतियों में, स्तोत्रों में, इनकी भक्ति में एक विशेष एकता है। और इन सारे स्तोत्रों को जो कुल मिलाकर 4000 हैं उनको एकत्र किया हुआ है, और इस एकत्र किए हुए ग्रंथ को नालायुर दिव्य प्रबंधम कहते हैं। नालायुर मतलब तमिल भाषा में 4000, दिव्य मतलब भगवान से संबंधित, और प्रबंधम मतलब जो संग्रह किया हुआ है। ये तमिल भाषा के वेद माने जाते हैं। साधारण तमिल भाषा में काव्यात्मक रूप में ये महान शुद्ध भक्तों के हृदय की भक्ति को व्यक्त करते हैं, साथ साथ बहुत ही गूढ़ दार्शनिक तत्वों को भी प्रकट करते हैं। वे आलवार जगह जगह घूमा करते थे, और खास करके एक दिव्य प्रबंध में उन्होंने जो विष्णु मंदिरों में भ्रमण किया, जहां दर्शन किया, वो कुल मिलाकर 108 हैं। इनको 108 दिव्य देशम कहते हैं, और इनकी जो स्तोत्र हैं वो इन 108 मंदिरों के संदर्भ में हैं। तो ये आलवार अलग अलग समय पर होकर अलग अलग स्थानों में रहे, और आज से हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करना आरंभ करेंगे। पिछली बार ये जानकारी आपको दी गई थी, जो आपके सामने यहां पर है, ये 12 आलवारों के नाम हैं, किस समय पर वो रहे और कौन से नदी के तट पर उनका जन्म हुआ, जैसे कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी है, और वो किस चीज के, भगवान के किस वस्तु के वो अवतार हैं या किस भक्त के अवतार हैं, ये भी यहां पर बतलाया हुआ है। तो आज हम पहले 3 आलवारों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तीनों को एक साथ में इनकी चर्चा की जाती है, एक ही साथ में उनका जन्म हुआ था लेकिन अलग अलग स्थानों में। ये पहले 3 आलवारों के नाम है पोग्यल आलवार, दूसरे हैं भूतम आलवार, और तीसरे हैं पेय आलवार। क्यों इनके ऐसे नाम पड़े, इन नामों का अर्थ क्या है, और किस तरह से उन्होंने अपनी भक्ति प्रकट की, वो आज संक्षेप में हम वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे। ये तीन आलवार एक ही महीने में, एक ही साल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन केवल एक दिन का अंतर। पोजय आलवार का जन्म मंगलवार को हुआ, गौतम आलवार बुधवार और पे आलवार गुरुवार, लेकिन अलग 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 जगह, और आपस में उनकी कोई पहचान नहीं थी, नहीं उनको पता था कि ऐसे महान भक्त हैं जो मेरे एक दिन बाद एक दिन पहले जन्म लिए हैं। कई साल ऐसे बीत गए और एक बार ये तीन आलवार मिले, क्योंकि वो साथ में एक ही काल में थे, इसलिए उनको एक साथ एक दल में ग्रुप में बताया जाता है। ये सबसे पहले तीन आलवार हैं जो द्वापर युग के अंत में रहा करते थे, और तीनों का जो जन्म है या आविर्भाव है वो बड़ा अद्भुत है, अलौकिक है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्षिण, कि हे अर्जुन, जो ये श्रद्धा पूर्वक तत्वतः जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, वो मेरे पास लौट कर आता है और उसे पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो विशेष करके भगवान के धाम से यहां भेजे जाते हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, उनका जन्म और उनके कर्म भी साधारण नहीं होते, वो भी दिव्य माने जाते हैं। तो इन तीनों आलवारों का जन्म भी बड़ा अद्भुत था। तीनों के कोई माता पिता नहीं थे, तीनों का जन्म फूल से हुआ, फूलों से अलग अलग जगह। तो माता पिता न होने के कारण ये तो बिल्कुल ही अद्भुत है। ऐसे उदाहरण कितने पाए जाते हैं ब्रह्मांड में। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी हैं जो स्वयंभू माने जाते हैं, और जो कि भी एक फूल से उत्पन्न हुए। कौन सा फूल? कमल पुष्प था, जो भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी के अलावा और ऐसे शायद ही बहुत ही कम होंगे उदाहरण इस ब्रह्मांड में जो कि फूल से उत्पन्न हुए या जिनका जन्म ऐसे अद्भुत था। हाँ, भगवान या भगवान के पार्षद, उनकी नित्य संगिनी जैसे राधा रानी हैं, सीता देवी हैं, उनका जन्म ऐसे अद्भुत रूप से हुआ, परंतु अन्यों के बारे में ऐसे विरला ही कुछ सुनाई पड़ता है। उन्होंने जो स्तोत्र कहे अपने भक्ति भावना से, निस्सहाय भाव से, केवल ये निकल आए, बहक गए उनके मुंह से। ऐसा नहीं कि वो सोचे और इन कविताओं की रचना करने के लिए बहुत सोच विचार किया, अब अगला शब्द कौन सा आएगा, अब इसके बाद कौन सी पंक्ति आएगी। नहीं, भर 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 गोमुख की तरह, जैसे गंगा बहती है गोमुख से, वैसे उनके मुख से ये सुंदर स्तोत्र निकल आए। क्यों निकल आ पाए? क्योंकि उनके हृदय में भक्ति का सागर भर गया था, उभर रहा था, भक्ति का तूफान हृदय में उमड़ रहा था, इसलिए ये तूफान शब्दों के रूप में उनके मुखारविंद से निकले। और इनके जो स्तोत्र हैं इन तीन आलवारों के, इनको तिरुवंदादि कहते हैं। और तिरु का मतलब अलग अलग हो सकता है। तिरु तमिल भाषा में है ऐश्वर्य, संपत्ति, सौंदर्य, या ये लक्ष्मी देवी को भी संबोधित करता है। और अंदादि मतलब अंत और आदि, ये एक छंद है कविता का, जिसमें जो एक श्लोक का जो आखिरी शब्द है या अक्षर है, उसी शब्द या अक्षर से उसके बाद वाला श्लोक आरंभ होता है। तो पहले श्लोक का अंत और इस श्लोक की शुरुआत या आदि वो एक है, इस तरह से इसको अंत आदि, ये छंद है एक। तो तिरुवंदादि, इनके स्तोत्रों को तिरुवंदादि कहते हैं। और इन तीनों आलवारों ने 100 स्तोत्र किए, 100 100 100, ऐसे 300 स्तोत्र हुए। पिछली एकादशी को हम ये बतला रहे थे कि दिव्य प्रबंधन के चार भाग किए जाते हैं और इनमें से एक भाग है यूरप्पा, और यूरप्पा के पहले तीन भाग हैं इन तीनों के 100-100 स्तोत्र तिरुवंदादि, और तीनों ने किए हुए तिरुवंदादि श्लोकों के नाम अलग अलग दिए गए हैं, जिनका जिनको हम बाद में आगे चल के बताएंगे। इस तरह से इन आलवारों ने अपने सुंदर स्तोत्रों से हम सबको सिखलाया है कि भक्ति किस तरह से की जाती है। तो आइए संक्षेप में एक एक करके इन तीनों के बारे में हम सुनते हैं। पहले हैं पोइग्याय आलवार, ये भगवान श्री हरि के श्री विष्णु के शंख या पांचजन्य के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म एक स्वर्ण कमल से हुआ जो कि एक सरोवर में था, और ये सरोवर या कुंड को तमिल भाषा में पोइग्याय कहते हैं। करेक्ट, तमिल भाषा में पोइग्याय कहते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ पोइग्याय आलवार। और ये कुंड एक विशेष स्थान में था, यथोक्तकारी मंदिर है जो कि कांचीपुरम में है, भगवान विष्णु का मंदिर है, तो वहां पास में एक कुंड है और इस कुंड के भीतर एक स्वर्ण कमल पुष्प के ऊपर पोइग्याय आलवार का जन्म हुआ। और क्योंकि संस्कृत भाषा में कुंड या सरोवर को सरस कहते हैं, तो इसलिए पोइग्याय आलवार का दूसरा नाम संस्कृत भाषा में सरो है, सरो योगी। पोइग्याय या सरस एक ही बात है, उनका दूसरा नाम है सरो योगी या कारसार योगी, वो भी सरस से जो उत्पन्न हुए वो उनका नाम है कारसार योगी। और जो उनके तिरुवंदादि जो उनको स्तोत्र हैं वो मुडल तिरुवंदादि कहते हैं। इनका जन्म मंगलवार को हुआ श्रवण नक्षत्र के समय तुल मास में। तो ये रहे पोइग्याय आलवार या सार योगी, सरो योगी, ये कार सार योगी। इसके बाद में दूसरे रहे भूतम आलवार। भूतम आलवार ये भगवान विष्णु का जो गदा है कौमुदकी, इसके अवतार माने जाते हैं। जैसे हम पिछली बार सुन चुके हैं कि भगवान के धाम में हर एक वस्तु चेतन होता है, वहां पे आत्मा और शरीर में अंतर नहीं होता है, जैसे कि यहां भौतिक जगत में है। यहां पर शरीर और आत्मा में अंतर होता है, शरीर जड़ पदार्थ है और आत्मा चेतन है, परंतु भगवत धाम में हर एक कण कण हर एक अणु चेतन है। हर एक पत्ता, घास का तिनका, पानी का बूंद, हवा, पत्थर, सब कुछ चेतन है, वो है चिन्मय धाम। इसलिए भगवान के जो सामग्री है, भगवान की जो वस्तुएं हैं, उनके आभूषण हैं, उनके अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, कपड़े हैं, ये सब चेतन है। चेतना मतलब व्यक्तित्व, तो ये सब व्यक्ति हैं, भगवान की सेवा करते हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग भावों में, अलग अलग रसों में। तो भगवान का जो कौमुद की गदा है वो है भूतम आलवार। उनका जन्म एक माधवी पुष्प से हुआ जिसको तमिल में कुरुकट्टी कहते हैं, और ये माधवी पुष्प एक कुंड में पाया गया एक मंदिर में मल्लापुर में, जो कि आज महाबलीपुरम है। इस स्थान में उनका प्राकट्य या आविर्भाव हुआ। भूतम मतलब जिनको भगवत कृपा से दिव्य ज्ञान मिला है, इनको भूत कहते हैं, या तमिल भाषा में पूत, जिनको भगवत कृपा से आध्यात्मिक साक्षात्कार हुआ है, ज्ञान मिला है, जिनका पोषण दिव्य ज्ञान है, भक्ति है, उनको भी भूत या पूत कहते हैं। इसलिए उनका नाम हुआ भूतम आलवार, या कभी कभी उनको भूत योगी ऐसा भी कहते हैं। और उनका जन्म भी स्वस्थ नक्षत्र के समय हुआ था और जिस तिरुवंदादिक की रचना उन्होंने की उसको एरंडम कहते हैं। इन्होंने भी 100 स्तोत्रों की रचना की। तो ये रहे भूतम आलवार, और फिर रहे तीसरे आलवार पेय आलवार। पेय आलवार भगवान श्री कृष्ण के तलवार के अवतार माने जाते हैं। उनके तलवार का नाम क्या है? नंदक। नंदक तलवार के अवतार पेय आलवार माने जाते हैं। उनका जन्म भी एक पुष्प से हुआ, रक्तोत्पल। उत्पल मतलब एक प्रकार का कमल है, कमल पुष्प है। रक्त मतलब लाल रंग का। रक्तोत्पल को माधवी भी कहते हैं, मालती, क्षमा कीजिए, माधवी नहीं, मालती, मालती पुष्प। और उनका जन्म हुआ एक कुंड में आदिकेश्वर मंदिर के पास, जो मैलापोर शहर में है। सब उसी प्राय आसपास उसी जगह में। और शतभाष्य नक्षत्र के समय उनका जन्म हुआ। और उनका दूसरा नाम है महामुनि, क्योंकि बहुत महान भक्त थे भगवान के, महामुनि भी कहते हैं उनको। उनका नाम पेय आलवार। पेय मतलब जो पूरी तरह से नशे में है, उन्मत्त है। किस चीज से नशे में है? भगवत प्रेम के नशे में है, इसलिए उनका नाम पेय आलवार कहा गया। और जब व्यक्ति नशे में होता है, आप जानते हैं, वो तरह तरह से व्यवहार करता है जो साधारण नहीं होता। यहां जो शराब के नशे में होते हैं उनका व्यवहार बड़ा विचित्र रहता है, लेकिन उससे उस व्यक्ति की हानि होती है, सब जगह नुकसान होता है, किसी की भी भलाई नहीं होती, इसमें कोई आनंद नहीं है। परंतु भगवत प्रेम में जब कोई व्यक्ति उन्मत्त रहता है तो वो सबसे ऊंचे प्रेम की, आनंद की अनुभूति करता है। और अगर ऐसे अवस्था में कोई महान भक्त ऐसे कोई व्यवहार करे जो हमें समझ में न आए, ये हमारे साधारण सामाजिक नीति में या पद्धति में न बैठे, तो हमें ऐसे भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे महान भक्त साधारण लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो हमेशा भ्रांति में रहा करते थे। भगवत प्रेम का तूफान उनके हृदय में जब था तो भक्त को कभी कभी पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, वो भगवत प्रेम के वश में रह जाता है, इसलिए वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता। जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो माया के चंगुल में फंसा हुआ है। माया उसको कठपुतली बनाती है और नचाती है, और इंद्रियों के विषय का गुलाम बन जाता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन भगवान का महान भक्त जो है वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी गुलाम है, परंतु योग माया का, महामाया का नहीं, भगवत प्रेम का गुलाम हो जाता है वो। और जैसे ये भगवत प्रेम की लहरें उसके हृदय में बहती रहती हैं, वैसे वैसे उसकी भावनाएं, उसकी बोलचाल, उसका रहन सहन बदलते रहता है। और भक्त को भी कभी पता नहीं चलता है कि वो क्यों इस तरह से व्यवहार करता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, क्या बोलता है। हमने केवल उच्चतम स्तर के भक्तों की चर्चा कर रहे हैं, साधारण वैदिक भक्ति करने वाले भक्तों के लिए ऐसे नहीं है। इसलिए हम जो वैदिक भक्ति का पथ स्वीकार कर रहे हैं, हमको बड़े सावधानी से बोलना चाहिए, रहना चाहिए, आपस में व्यवहार करना चाहिए। दोनों गुलाम है, भौतिक व्यक्ति भी और महान भक्त भी। परंतु साधारण व्यक्ति के गुलामी में केवल क्लेश है, कष्ट है, दुख है। और भगवान के शुद्ध भक्त की गुलामी में केवल आनंद है, और ये आनंद का रस बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, इसकी वृद्धि होती रहती है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब महान भक्त को, शुद्ध भक्त को भगवान कृष्ण के नाम का स्वाद लग जाता है, तो एक ऐसे सागर में प्रवेश करता है, आनंद के सागर में, जो हर क्षण सदैव बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, निरंतर बढ़ते रहता है। इसलिए पेय आलवार को भ्रांत योगी भी कहते हैं, ये उनका और एक नाम है, क्योंकि कृष्ण भक्ति के भ्रांति में हमेशा वो रहते थे, ऐसे व्यवहार करते थे जैसे एक उन्मत्त व्यक्ति करता है कभी कभी। तो इनके नाम हैं महामुनि या भ्रांत मुनि, भ्रांत योगी इत्यादि। ये अलग अलग नामों से भी वो दक्षिण भारत में जाने जाते हैं, और जिन तिरुवंबादी की रचना उन्होंने की उसको मंत्रम कहते हैं। तो इस तरह से ये तीन आलवार, इनका संक्षिप्त रूप में इतिहास, इनके बारे में जानकारी। कई सालों तक वो आपस में मिले नहीं, न ही वो एक दूसरे के बारे में जानते थे। अपने अपने स्थान में वो भगवत भावना में रहा करते थे, जगह जगह घूमा करते थे, तीर्थ स्थानों में, प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों में, और वहां पे भगवान विष्णु के स्तुति किया करते थे, दर्शन करके बड़े आनंद को प्राप्त करते थे, अपनी ही दुनिया में निवास करते थे। और वो दुनिया इस दुनिया से काफी अलग है। जो शुद्ध भक्त की दुनिया होती है वो सत्य में स्थित होती है, और यहां की जो दुनिया है वो असत में स्थित है। लेकिन जो संसारी लोग होते हैं, जो भक्ति के तत्व को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, वो उल्टा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि उनका जीवन सत्य में आधारित है, और ये भक्त लोग जो हैं वो अपने ही कोई विचित्र दुनिया में रहते हैं, कि उनका जीवन झूठा है, काल्पनिक है, बेकार है, व्यर्थ है, उनको पागल कहते हैं। वास्तव में संसारी लोग पागल हैं, क्योंकि वो सत्य से दूर रहते हैं, सत्य से विमुख हो गए हैं। जो आदमी अपने आप को सड़क में जाके मैं शिवाजी राजा हूं, बादशाह अकबर हूं कहेगा, लोग कहेंगे ये तो पागल है, क्योंकि ये सत्य से कुछ अलग ही बोल रहा है। तो उसी तरह से हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम भोक्ता नहीं हैं, हम नियंत्रण करता नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं, और ये संसार को भोग करना हमारा काम नहीं है, नहीं हमारा स्थान है। हमारा स्थान केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, और इस सेवा में, सेवा करने से हमें शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होगी, जिसमें सच्चा आनंद हमें मिलेगा। लेकिन संसार के लोग झूठे आनंद के पीछे दौड़ रहे हैं, इसलिए सच्चे आनंद में रमण करने वाले लोगों को वो पागल समझते हैं। तो दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। भक्त आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और अभक्त भौतिक जगत में रहते हैं, और दोनों की कभी जमती नहीं, दोनों अलग अलग दिशा में रहते हैं। इसलिए जब शुद्ध भक्त संसारी लोगों के बीच में रहते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, जिस तरह से जब भौतिक लोग भक्तों के बीच में आते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। मुझे याद है एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, और पहले मैं ट्रेन में आया और बैठ गया अपने सीट पर, और फिर वहां तीन लोग अंदर आए, तीन आदमी आए, और मुझे देखकर बोलने लगे, अरे रे 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 रे, उनका चेहरा गिर गया। और उसे अरे कहां फंस गए, कहां आए, साधु आया, भक्त आया, और आपस में देख के एक बोलने लगा, गया सत्यानाश। और फिर हमें पता चला, फिर उन्होंने अंदर से उनका एक, उनकी एक शीशी निकाली, शीशी में उनका एक प्रकार का रस था जिसका वो अनुभव करना चाहते थे। लेकिन हालांकि ट्रेन में ये पान करना वर्जित है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ छुपा छुपा कर इधर उधर करके बाहर जाके वो कर रहे थे। आखिर हमें उनसे कहना पड़ा कि ये सब यहां नहीं चलेगा। तो खैर, जिस तरह से भौतिक लोगों को भक्तों के संग में आकर अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से भगवान के भक्तों को भौतिक लोगों के बीच में अच्छा नहीं लगता। तो ये तीन आलवार जगह जगह विष्णु मंदिरों में भ्रमण किया करते थे, और शहरों में, गांवों में केवल उतना समय रहा करते थे जितना कि उस स्थान के लोग सहन कर पाते थे। क्योंकि अभक्तों के लिए भक्तों का संग लेना मतलब ये सहन करने की बात हो जाती है, भक्तों के लिए दूसरे भक्तों का संग ये आनंद की बात है, सहन नहीं, सहन शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता उसके लिए। वो बड़े आतुरता से राह देखते हैं, कब मुझे भक्तों का संग मिलेगा। लेकिन भक्तों की बात तो बहुत अलग है अभक्तों की बात। जैसे एक तरुण है हमारी संस्था में, और उनकी मां भक्त नहीं है, तो उनकी मां हमको बोल रही थी, देखो इसका विवाह करा दो, इसको विवाह जल्दी करने दो, लेकिन देखो कोई भक्त से नहीं करना, क्योंकि एक भक्त घर में बहुत हो गया, अभी दो आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब अभक्तों के लिए भक्तों को सहन करना पड़ता है। एक भक्त को सहन करना बहुत ज्यादा मुसीबत है, दो आ गए तो क्या होगा। तो इस तरह से वो देखते थे कि यहाँ के लोग कैसे हैं, वो हमें सहन कर पा रहे हैं कि नहीं, वो हमारा लाभ लेना चाहते हैं कि नहीं, वो हमसे भक्ति के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहते हैं कि नहीं। इस दृष्टि से वो कभी कभी किसी स्थान में एक मिनट रहते, किसी स्थान में एक घंटा, कहीं एक दिन, कहीं एक रात, कहीं ज्यादा समय, इस तरह से इधर उधर भ्रमण करते रहते और अपने दुनिया में, अंदर की दुनिया में, हृदय की दुनिया में मस्त रहते भगवत चिंतन में। और बाहरी लोगों को देखकर उनको बड़ा दुख लगता था। और ऐसे तीनों अपने अपने रास्ते में चलते चलते एक बार तिरुकोल्लूर नाम के तीर्थ स्थान में, जहां प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है, उनकी मुलाकात अद्भुत परिस्थिति में हुई। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि वो सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्रारूढानि मायया। वो कहते हैं कि मैं सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं और मैं सारे प्राणियों के भ्रमण को नियंत्रित करता हूं। इसका मतलब है कोई रास्ता भूल कर अगर मंदिर में आ जाए, गलत रास्ता पकड़ के यहां पर आ जाए, तो हमें समझना चाहिए कि यह चांस नहीं है, ये बाय चांस ऐसे हो गया। नहीं, अंदर ईश्वर भगवान श्री हरि विराजे हैं और उनके मार्गदर्शन से वो रास्ता, गलत रास्ता लेकर, तथा उसको समझ में आया कि मैंने गलत रास्ता लिया है, लेकिन वास्तव भगवान ने अंदर प्रेरित किया और उसको मंदिर में भेज दिया। तो भगवान हमारे भ्रमण को नियंत्रित करते हैं, इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को मिला दिया। परीक्षित महाराज को जब शाप मिला था कि उनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, वो गंगा के तट पर गए, उपवास करने लगे। जगह जगह से ऋषि मुनि वहां एकत्र हुए। उनसे परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए कि जो व्यक्ति मृत्यु के तट पर खड़ा हुआ है, उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजों के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे उसकी उपासना आराधना के विषय क्या होने चाहिए। उस समय अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग उत्तर दिए और परीक्षित महाराज को समझ में नहीं आया कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक उसी समय भगवान, जो कि परमात्मा के रूप में भी सुखदेव गोस्वामी के हृदय में विराजे थे, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के भ्रमण को ऐसे नियंत्रित किया कि ठीक वो उसी समय वहां पर आ पहुंचे। सिवाय नारद मुनि और व्यासदेव, जो कि सुखदेव गोस्वामी से वरिष्ठ थे, बाकी सारे ऋषि मुनि ने सुखदेव गोस्वामी को देखकर वो उठे, हाथ जोड़ा और इनको नियुक्त किया गया भागवत बोलने के लिए। तो ठीक उसी तरह से भगवान की योजना से ही गुरु और शिष्य का मिलन होता है। भगवत योजना से ही अचानक बाय चांस हम किसी दूसरे भक्त को मिल जाते हैं और वो हमें भगवान के बारे में बताता है, हम भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। सब ये परमात्मा के कृपा है। तो भगवान के नियंत्रण से ही, भगवान की योजना से ही ये तीनों आलवार एक दिन यहां पर मिले। कैसे मिले ये कहानी भी बड़ी सुंदर है। पहले आलवार पोइग्याई आलवार चलते चलते एक बार जा रहे थे, अपने ही मन में मस्त थे, भगवान श्री हरि का नाम कीर्तन करते जा रहे थे, भगवत स्मरण में डूबे हुए थे और वो एक खुली जगह में जा रहे थे। अचानक वर्षा हो गई, तूफान आ गया, मूसलाधार वर्षा होने लगी और पोइग्याई आलवार देख रहे थे कि यहां कोई आश्रय के लिए स्थान है कि नहीं। इधर उधर गए, अचानक एक आश्रम के पास में आए और आश्रम के प्रवेश द्वार के पास एक छोटा सा कमरा था, तो जल्दी से वहां पर वो अंदर गए। बहुत छोटी जगह थी वहां पर और केवल एक आदमी को सोने के लिए जगह वहां पर थी। तो उन्होंने सोचा अच्छी बात है, अभी वैसे भी रात हो गई है और एक आदमी को सोने के लिए जगह भी है और बाहर भी नहीं जा सकते, बारिश है, तो चलो यहां लेट जाते हैं। वहां कोई लॉज होटल तो रात को रहा नहीं करते थे आलवार लोग, जहां पेड़ मिल गया वहां पेड़ के नीचे रह गए, तो वहां लेट गए। अचानक कोई बाहर के दरवाजे को खटखटाने लगा। अरे अंदर कोई है, मुझे थोड़ा स्थान दीजिए अंदर आने के लिए, बाहर बारिश हो रही है, बारिश से मैं थोड़ा आश्रय लेना चाहता हूं। तो ये दूसरे व्यक्ति कौन थे? भूतम आलवार। उनको नहीं मालूम था कि अंदर कौन है। तो ये गए आलवार हैं, पहले कभी मिले नहीं थे, वो भक्त हैं भी या नहीं ये भी नहीं मालूम, उनका नाम क्या है वो भी नहीं मालूम। तो पोएगे अलवार ने कहा, देखो यहां सोने के लिए केवल एक आदमी के लिए जगह है, तो तुम्हें अंदर कैसे मैं ले सकता हूं? तो भूतम अलवार ने उत्तर दिया, अगर एक आदमी को लेटने के लिए जगह है तो फिर दो आदमी को बैठने के लिए जगह है, तो हमको अंदर छोड़िए। तो फिर पोएगे अलवार ने सोचा, हाँ ये बड़े बुद्धिमान व्यक्ति लगते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो इनको अंदर छोड़ना उचित होगा। तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया और उनको अंदर लिया और दोनों पास में बैठे और आपस में बात करने लगे भगवान के बारे में। थोड़ी ही देर में एक तीसरे व्यक्ति वहां बारिश से आश्रय ढूंढते ढूंढते वहां पर आ पहुंचे। ये कमरा देखा, दरवाजा खटखटाया, मुझे अंदर छोड़िए, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं अंदर आना चाहता हूं। वो तीसरे व्यक्ति कौन थे? पेय आलवार। वो भी इन अंदर जो दूसरे दो हैं पोएगे आलवार भूता मालवार, उनको नहीं पहचानते थे, जानते भी नहीं थे अंदर भक्त हैं अभक्त हैं कौन है, कुछ नहीं जानते थे। और नहीं अंदर बैठे हुए दो आलवारों को पता था कि बाहर कौन है। तो दोनों ने उत्तर दिया कि देखो ये कमरा बहुत छोटा है और हम केवल दो लोग यहां पर हैं, हम दो को यहां बैठने के लिए जगह है और बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो फिर पे आलवार ने उत्तर दिया, अगर दो लोगों के लिए बैठने के लिए जगह है तो फिर तीन लोगों के लिए खड़े होने के लिए जगह है, तो कृपया मुझे अंदर आने दीजिए। तो दोनों आलवारों ने सलाह मशवरा किया आपस में, सोचा कि यहां ये भी कोई विचित्र बड़े अद्भुत आदमी लगते हैं, ये साधारण आदमी नहीं है, शायद इनको भी अंदर लेना चाहिए। तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया और तीसरे आलवार अंदर आ गए और तीनों आलवार एक साथ में खड़े हो गए। बिल्कुल टाइट थी वहां जगह, बिल्कुल जगह नहीं, एक दूसरे कंधे से कंधे लगाकर खड़े थे वहां और आपस में अंदर अंधेरा, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं और खड़े हैं बिल्कुल ऐसे कंधे से कंधे लगाकर, क्या बातचीत करेंगे? वो अभक्त होते हैं तुरंत कुछ ना कुछ क्रिकेट मैच या कोई इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये तो भक्त हैं, किस विषय में बात करेंगे? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतः परस्परं कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 10वें अध्याय में ये भगवत गीता का ये चतुर्श्लोक बताते हैं, चतुर्श्लोक में से एक श्लोक है ये, दूसरे नंबर का श्लोक, जिसमें भगवान बताते हैं कि जब भक्त एकत्र हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं। कथयंतश्च मां नित्यं, केवल आपस में मेरे बारे में वो चर्चा करते हैं, क्योंकि भक्तों की पहचान ही ये है, मत चित्ता मत गत प्राण, कि भक्तों के लिए श्री कृष्ण ही प्राण धन है। बोधयंतः परस्परम, इसलिए आपस को परस्पर केवल भगवान के बारे में चर्चा करते रहते हैं, नाम नामोच्चारण करते रहते हैं, यही भक्त की पहचान है। सच्चे भक्त वो हैं जो इधर उधर भौतिक बातें नहीं करते हैं, भौतिक बातों में रुचि नहीं लेते हैं, केवल भगवान कृष्ण की कथा करना पसंद करते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते हैं और फिजूल की बातें नहीं करते हैं, केवल भगवत कथा जो दूसरों के लिए वास्तव में लाभदायक कथा हो ऐसी कथा करते हैं। तो ऐसे कथा करते गए और स्वाभाविक है जब तीनों इतने पास पास अंदर खड़े हैं तो एक दूसरे से परिचित होना चाहेंगे ना, कोई व्यक्ति आप तो पूछेंगे ना कि आपका नाम क्या है, आप कौन है, कहां से आए हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि आप कौन हैं, तो उन तीनों के जवाब सुनिए, सुनना है उनके जवाब। जब उनको पूछा कि आप कौन हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया? अगर हमें कोई रास्ते में मिलेगा और कहेगा आप कौन हैं, हम क्या बोलेंगे? हम ये इस व्यक्ति के व्यापारी हैं, हमारा नाम ये है, हम यहां रहते हैं, हमारे इतने बच्चे हैं, घर में ये है वहां है गाड़ी है ये है, हम इस जाति के हैं इस समाज के हैं। लेकिन पहले आलवार ने उत्तर दिया भगवत शेष भूतो हम, पंचरात्र का एक श्लोक कि मैं कौन हूं, मैं तो केवल भगवान के लिए रहता हूं, मेरा अस्तित्व केवल भगवान के लिए है, बस ये मेरा परिचय है। मैं कौन हूं, मैं केवल भगवान के लिए हूं, बस। सुंदर जवाब, संक्षिप्त रूप में जवाब दे दिया, उनका परिचय दे दिया। दूसरे अलवार की बात आई, आप कौन हैं? दासो हम वासुदेवस्य सर्वलोक महात्मानः। दासो हम, दास अहम, मैं दास हूं, किसका? वासुदेवस्य, वासुदेव श्री कृष्ण, सर्वलोक महात्मनः, जो सब लोकों में सबसे महान व्यक्ति हैं, वासुदेव श्री कृष्ण, मैं उनका दास हूं। ये नारदीय पंचरात्र का श्लोक है, तो अपना परिचय उन्होंने ऐसे दिलाया। तीसरे ये अलवर से पूछा गया, आप कौन हैं? तो उन्होंने ऐसे जवाब दिया, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य अक्लिष्ट कर्मणः। मैं भी दास हूं, लेकिन किसका? कौशलेन्द्रस्य, कौशल इंद्र, कौशल मतलब श्री रामचंद्र जी का राज्य, इंद्र मतलब राजा, तो कौशलेन्द्र मतलब कौशल राज्य के राजा, इनका मैं दास हूं। लेकिन ये कौशल राज्य राजा का नाम क्या है? रामस्य अक्लिष्ट कर्मणः, जिनके जो कर्म करते हुए कभी थकते नहीं है, और क्लिष्ट मतलब संस्कृत भाषा में जो कभी थकते नहीं है। ये रामायण से के सुंदरकांड से श्लोक है वास्तव में। जब हनुमान जी को श्री रामचंद्र ने भेजा था कि जाओ सीता को ढूंढो, तो आप तो ये कथा जानते हैं कि महेंद्र पर्वत से खड़े होकर छलांग मारी हनुमान जी ने, और सारे समुद्र को पार करके सीधे लंका पहुंच गए। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने क्या किया? तहस नहस कर दिया, वहां सारे लंका को बर्बाद कर दिया, और विशेष करके रावण और अन्य राक्षसों के जो रमन के लिए जो कानन तो वन थे, जो बगीचे उद्यान थे, उनको विशेष करके नष्ट किया, बड़ा उत्पात कर दिया वहां पर। और फिर ये सब करने के बाद, जबकि कई राक्षसों की हत्या भी कर दी थी उन्होंने, वो एक ऊंचे स्थान पर जाकर वो जोर आवाज में श्री राम का गुणगान करने लगे, और उस समय हनुमान जी ने यह बात कही थी, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य अक्लिष्ट कर्मणः। तो ये अपना परिचय तीसरे अलवार में दिया कि मैं भी ऐसे श्री राम का दास हूं। इस तरह से आपस में एक दूसरे के परिचय हो गया, बस उतना काफी था उनके लिए, और उनको पूछने की जरूरत नहीं। नहीं, वो ठीक है तुम दास हो, लेकिन फिर भी क्या करते हो, कहां रहते हो, उतना काफी उनके लिए। क्यों काफी था? क्योंकि वो जान गए कि ये कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, बस अपने को भक्तों का संग मिल गया ना, बहुत है, भक्तों को और क्या लेना देना। अब कितने ऐसे भक्त हैं, जब हम उनको मिलते हैं केवल उनके दीक्षा का नाम हम जानते हैं, और आज तक ऐसे भक्त हैं जिनको हम इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, कई सालों से जानते हैं, और बड़े प्रेम का संबंध है हमारा, लेकिन उनके पहले का नाम क्या हमको आज तक नहीं मालूम, या वो क्या करते थे पहले, कभी कभी उतना भी हमें नहीं मालूम। दीक्षा का नाम है भक्तों, भक्ति में परिचय हमारा, ये अमुक दास है, जगन्नाथ दास है, कृष्ण दास है, बस हमारे लिए इतना काफी। बाहर की दुनिया में जब लोग भक्तों से मिलते हैं, वो भक्ति के बारे में जिज्ञासा नहीं करते ज्यादा, वो पहले आपके इतिहास जानना चाहते हैं, आप क्या करते थे, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, उनका क्या, उन्होंने क्या कहा जब आप भक्ति में आए, ये सब परिचय जानना चाहते हैं। लेकिन भक्तों के बीच में ज्यादा इतनी उत्सुकता नहीं होती है इसे भौतिक चीज जानने के लिए, लेकिन भौतिक लोगों को होती है। इसलिए बैक टू गॉडहेड पत्रिका में प्रभुपाद जी ने कहा है कि ऐसे लेख हमेशा लिखना अलग अलग भक्तों के बारे में कि मैं कृष्ण भक्ति में कैसे आया, क्योंकि लोगों को इसे पढ़ना अच्छा लगता है। मैं ऐसे जा रहा था, अचानक एक व्यक्ति ने मुझे मिला, उसने ऐसे किया, फिर मैं उसको मैंने तिरस्कार किया उसका, अलग अलग तरह से हम कैसे भक्ति में आए, लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भक्तों के लिए वास्तव में देखा जाए तो उनके लिए एक ही पहचान है, ये कृष्ण भक्त है, मैं भी कृष्ण भक्त हूं, बस हमारा संबंध इसी स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर है, भक्ति के स्तर पर हमारा संबंध है, भौतिक स्तर में संबंध नहीं है कि हमारे समाज के हैं इसलिए हम इनसे ज्यादा प्रेम करेंगे, ये हमारे भाषा बोलने वाले हैं इसलिए हम इनसे ज्यादा प्रेम करेंगे, ये हमारे कुटुंब के हैं, नहीं, ये कृष्ण भक्त है, भले किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, हमारे कुटुंब का हो या न हो, अमीर हो गरीब हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, ये कृष्ण भक्त है, हमारे लिए इतना काफी है। ये सबक हम आलवारों की इस छोटी सी लीला से समझ सकते हैं। लेकिन ये लीला अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी शुरू हो रही है। तो इस तरह से समय बीतता गया बीतता गया। उधर वैकुंठ में बैठे बैठे भगवान नारायण देख रहे थे, अरे वाह बहुत अच्छी संधि मिल गई, मेरे तीन रत्न जो अलग अलग थे, अलग अलग जगह में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, अब सब एक जगह आ गए, अरे वाह ऐसा मौका कब मिलेगा, ऐसी कितनी आनंद की बात है। और उन्होंने सोचा अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा वहां पर, एक नहीं दो नहीं तीन मेरे शुद्ध भक्त यहां एक ही छोटे से स्थान में है, अब पकड़े गए, अब कहां जाएंगे मेरे से, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो फिर भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से चर्चा करना आरंभ कर दिया। और उसी समय तीनों आलवारों ने देखा, अरे ये कौन घुस रहा है हमारे बीच में, वैसे ही तीनों इतने टाइट थे, वहां पर जगह बिल्कुल नहीं थी, अचानक देख रहे कि कोई धक्का मार के अंदर घुस रहा है, जगह तो है नहीं, वो सोच रहे कौन है, देख रहे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो तीनों को मन में विचार आया, क्या भूत है, क्या ऐसा भूत है जो अभी उसको मन में विचार आया कि हमारे बीच में आना, इसी स्थान में आना, उसको और कोई जगह नहीं मिला इस भूत को आने के लिए, कौन हो सकता है ये, कौन सा भूत है ये। और फिर सरोलोदी मतलब पोजाई अलवार वो कहने लगे, अरे चलो एक दिया तो लगाए, एक दीप जलाकर देखे तो सही ये कौन आया हमारे बीच में, वैसे भी जगह नहीं और ये बिल्कुल हम अभी ऐसे खड़े हैं जैसे एक पैर पे खड़े होना लग रहा है अभी। और फिर आपस में वो देखने लगे कि अब यहां से दीप कहां पाया जाए, दीप कहां से मिलेगी इस गुफा इस छोटे से कमरे के अंदर, बाहर बारिश हो रही है, वहां कोई नहीं है। तो उस समय तीनों ने अपने अपने मन की बात व्यक्त की, कैसे उन्होंने अपने अपने दीप जलाए, कैसे दीप जलाए, ये सब तमिल भाषा में है और हम भी तमिल नहीं जानते और आप भी नहीं जानते, इसलिए साधारण भाषा में आपको हम बताएंगे कि सरोयोगी ने किस तरह से दीप जलाया, कौन सा दीप जलाया उन्होंने। उन्होंने कहा कि सारा विश्व मेरा दीप है और इसके अंदर घी क्या है, जो तेल है घी है वो है समुद्र, और जो वात है वो क्या है, वो अग्नि है जो कि सूर्य में है। और ऐसे इस दीप से मैं उन भगवान को देखने जा रहा हूं और ऐसे मैं एक बहुत ही सुंदर हार उनके प्रशंसा में उनके गुणगान में मैं तैयार कर रहा हूं उनको अर्पण करने के लिए, किनको, जिनके कर कमलों में एक बहुत प्रज्वलित तेज चक्र है और जिनका जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो ये सरोयोगी या पोजाई अलवार का दीप था जिससे वो देखना चाहते थे कि कौन आया हमारे बीच में। फिर रहे भूतम अलवार, भूतम अलवार ने कहा कि हे भाई मैं भी मेरे दीप में भी अर्पण करना चाहता हूं जिससे कि और उजाला बढ़ जाए। तो भूतम अलवार का दीप क्या था, उनका दीप था भक्ति प्रेम, और घी क्या थी, घी वो आतुरता वो तीव्र इच्छा आकांक्षा भगवान को जानने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को देखने के लिए। और वहां वात क्या था, उनके हृदय की जलन भगवान को जानने के लिए, भगवान के भीतर जो उनकी भक्ति की अग्नि जल रही थी। और इस तरह से वो कहने लगे कि मैंने ये भक्ति का दीप जलाया है मेरे श्रीमन नारायण को जानने के लिए देखने के लिए। और फिर रहे पेय थे, तो वो कहने लगे आप दोनों ने तो बड़ा सुंदर दीप बनाया है लेकिन मैं तो इस योग्य नहीं हूं दीप बनाने के लिए, क्योंकि मैं तो उन्मत्त रहता हूं भगवत प्रेम में। और ऐसे जो पद्मा रमण है, पद्मा रमण मतलब कौन, पद्मा मतलब लक्ष्मी देवी, तो पद्मा रमण है श्री नारायण। तो कहने लगे कि पद्मा रमण के चरण कमलों में मुझे तो बिल्कुल पागल बना दिया है, इसलिए मेरे जो आंखें हैं उसे मूसलाधार वर्षा बह रही है और मेरा कंठ भी गदगद वाक्यों से रुद्ध हो गया है और मैं तो केवल आनंद से नृत्य करता हूं, इसलिए मैं तो ऐसे दीप नहीं जला सकता। लेकिन आपने जो दीप जलाया हुआ है उससे मैं मेरे प्रभु को देख सकता हूं। तुम क्या देख रहा हूं मैं आपको समझाऊंगा। मैं देखता हूं कृपा की मूर्तिमान स्वरूपिणी लक्ष्मी देवी खड़ी है। वो अकेले नहीं है, उनके सामने वो श्रीमन नारायण खड़े हैं जिनके शरीर की कांति वो नीले रंग के सागर के बराबर है और जो एक तेजस्वी चमकते हुए सूरज के समान वो अभी सुशोभित दिख रहे हैं, जिनके सुंदर कर कमलों में जलता हुआ चक्र है और दूसरे कर कमलों में एक सुंदर शंख है। मैं ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहा हूं। इस तरह से पेड़ अलवार ने अपने दिव्य चक्षु से जो उन्होंने भगवान का दर्शन किया उसका वर्णन किया। तो ये भगवान का दर्शन जो है ये एक साधारण चीज नहीं है। कई बार लोग कहते हैं मुझे भगवान का दर्शन हुआ, हम कई लोगों को मिल चुके हैं, अब मैंने भी भगवान को देखा है। ऐसे थोड़ी देखते हैं भगवान। ऐसे साधारण व्यक्ति घर में जाके जो टीवी देखेगा और फिर दिन भर इधर उधर की बातें करेगा, ऐसे व्यक्ति भगवान को देख सकता है कभी? भगवान का दर्शन इतना सस्ता है नहीं। भगवान का दर्शन केवल उन लोगों के लिए है जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया है और जिसमें जिस हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम भरा हुआ है। जैसे कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेम का अंजन जब तक आंखों में लगा हुआ नहीं है तब तक व्यक्ति सदैव भगवान श्री हरि का दर्शन कैसे भला कर सकता है। इस तरह से ये तीन आलवार इस दुनिया के नहीं थे, उनका स्तर कुछ निराला ही था। वो इतने ऊंचे स्तर पर स्थित थे कि संसारी लोग की कल्पना के बाहर। जो संसारी लोग हैं वो भक्तों को नहीं जान सकते कभी। भक्त कितने विशेष होते हैं, कितने महान होते हैं, उनके समझ के बाहर है, कोई कल्पना नहीं है उनको। जैसे छोटा बच्चा एक रत्न को और सड़क पर पड़े हुए कांच के टुकड़ों में भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह से संसारी लोग भक्ति के धन और रत्न और इंद्र तृप्ति के टूटे हुए कांच में वो भेदभाव नहीं कर सकते कि क्या श्रेष्ठ है। तो खैर, जब इस तरह से भक्ति के और ज्ञान के दीप जल गए तो श्रीमन नारायण जो कि अपने भक्तों के बिना नहीं रह सकते, जैसे कि समझ लीजिए प्रकाश बिना सूर्य के भास्करेण प्रभा यथा जैसे रामायण में कहा गया है, या जैसे सुगंध फूल के बिना कैसे हो सकता है, तो भगवान नारायण भक्तों के बिना नहीं रह सकते। तो भक्तों के प्रेम से निस्सहाय होकर अपने आप को प्रदर्शित करने में बाध्य हो जाते हैं। तो तीनों आलवारों के सामने श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, अपना दर्शन उन्होंने दे दिया सबके सामने। और जैसे ही वो प्रकट हुए तो तीनों आलवार आश्चर्यचकित हो गए। जब भगवान प्रकट होते हैं तो कोई टॉर्च लगा के देखने की आवश्यकता नहीं होती है, अरे पावर चला गया, बिजली कट गई, अब आप कैसे देखें? नहीं, भगवान के धाम में सब कुछ स्वयं प्रकाशमान है। न तो भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं भव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे धाम में बिजली की आवश्यकता नहीं है, बैटरी की नहीं, अग्नि की नहीं, चांद सूरज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां हर कण स्वयं प्रकाशमान है। तो जब हर कण भगवान के धाम में स्वयं प्रकाशमान है और उस चीज को देखने के लिए किसी बाहर से रोशनी की आवश्यकता नहीं है, तो भला भगवान को देखने के लिए बाहर से टॉर्च की क्या आवश्यकता है? तो जब भगवान वहां उस अंधेरे कमरे में प्रकट हो गए तो सब जगह उजाला हो गया और तीनों आलवारों ने उनको देखा, भाव विभोर हो गए और तुरंत उनके हृदय से सुंदर सुंदर स्तुतियां स्तोत्र भगवान के भर 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 निकले आए, सब सारे तमिल भाषा में वो बोलने लगे और भगवान का सुंदर गुणगान उन्होंने किया। और इन स्तोत्रों को तिरुवंदादी कहते हैं। तीनों ने 100-100 स्तोत्रों की रचना की। इससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए, चारों आपस में बातचीत करते लगे। भगवान भी कृष्ण कथा करना अच्छा उनको पसंद करते हैं, वो भी आपस में भक्तों की कथा करते हैं, अपना गुणगान सुनना भी वो पसंद करते हैं। हम जब हमारा गुणगान सुनते हैं खुद का, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन ये मिथ्या अहंकार है, ये झूठ है, असत्य है। लोग जब हमें बोलेंगे आप कितने अच्छे हैं, आप कितने महान हैं, ये झूठ है। लेकिन जब हम भगवान से कहेंगे आप कितने महान हैं, तो ये सच है। तो भगवान हमेशा सत्य में स्थित होते हैं, भगवान के भक्त भी। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपना ही गुणगान सुनना पसंद करते हैं, लेकिन इससे उनका अहंकार नहीं बढ़ता। हम जब हमारा अहंकार हमारा गुणगान सुनते हैं, हमको भी अमृत समान लगता है और ऐसे लगता है कि बस सुनते जाए, लेकिन इससे हमारा नुकसान होता है, हमारा अहंकार बढ़ जाता है। तो भगवान श्री हरि तीनों आलवारों के साथ में बोलते गए, समय कैसे बीता, रात कैसे बीत गई, चारों को पता नहीं चला। यह है भक्ति। क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक स्तर में स्थित होता है, होती है, इसलिए यह भौतिक दुनिया के बंधनों से, सीमाओं से परे है। यह भौतिक दुनिया में एक बड़ी सीमा है, समय। लेकिन भक्ति में समय का बंधन या समय की सीमा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब रासलीला की गोपियों के साथ में, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की एक रात्रि इस पृथ्वी लोक की एक रात्रि में आके फिट कर दिया। लेकिन गोपियों को समझ में नहीं आया कि एक ब्रह्मा जी की रात्रि बीत गई है। इस तरह से भक्ति में, कृष्ण भक्ति में काल का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरह से हमारा अनुभव काल के साथ यहां पे है, वैसे भक्ति के स्तर में नहीं होता। ऐसे समय बीत गया, तो ऐसे भक्ति करने से ही हम भगवान को तत्वतः जान पाएंगे और देख पाएंगे। जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या त्वनन्मया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परम तप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या तू अनन्मया शक्य अहम एवं विधः अर्जुन। विध मतलब जानना, एवं मतलब निश्चित ही। हे अर्जुन, अगर मुझे निश्चित ही जानना है तो क्या करना चाहिए? अनन्य भक्ति। केवल अनन्य भक्ति से तुम मुझे जान पाओगे, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ज्ञातुम, तुम मुझे जानोगे। जानने के बाद क्या होगा? दृष्टुम, तुम मुझे देखोगे। और मुझे तुम देखने के लिए योग्य हो जाओगे, उसके बाद किसके लिए योग्य हो जाओगे? प्रवेष्टुम, तुम मेरे धाम में प्रवेश कर पाओगे। तो पहले हमें भगवान की भक्ति करनी है, उनके बारे में उनको जानना है, उनका दर्शन करना है, और वापस भगवान के धाम में जाना है। ये हमारे जीवन का टाइम टेबल होना चाहिए, बस। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चाश्मि तत्पतः ततो माम तत्पतो ज्ञात्वा विशितो तद अनन्तरम्। भगवान श्री कृष्ण गीता के इस श्लोक में भी बता रहे हैं कि कैसे हमें भगवान के धाम में जाना चाहिए। विशितो तद अनन्तरम्, अनंतरम मतलब भगवान का धाम या आध्यात्मिक जगत, उसमें प्रवेश करने के लिए भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान को जानना चाहिए, और भगवान को जानने के लिए भक्ति एकमात्र मार्ग है। इस तरह से ये तीन आलवारों ने अपना जीवन बिताया। उन्होंने सुंदर स्तुतियां की हैं। उन तीनों के स्तोत्रों में से हम एक दो छोटे छोटे पॉइंट आपको बताने के इच्छुक हैं, जिससे हम थोड़ा कुछ सीख सकें तिरुवंदादी से। जैसे पुलवाई अलवार ने एक सुंदर स्तोत्र की रचना की, जिसमें वो कहते हैं कि जब मैं गर्भ में था, याद रखिए वो गर्भ में तो थे नहीं, फूल में से वो प्रकट हुए, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं, जब मैं गर्भ में था तो गर्भ में रहते हुए ही मैंने मेरा सर झुकाया श्री रंगम की ओर, और वहां केवल रंगनाथ स्वामी को अपने मन में रख के मैंने अपने हाथ जोड़ दिए। ऐसे रंगनाथ देव का आश्रय मैंने लिया है, मैं उनको कैसे भला भूल सकता हूं। ये उनका एक स्तोत्र है। जैसे परीक्षित महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अपने मां उत्तरा देवी के गर्भ में किया, और जब भगवान ओझल हो गए, अदृश्य हो गए, उसके बाद भी परीक्षित महाराज सदैव भगवान को ढूंढ रहे थे। कहां गए वो भगवान जिनको मैंने देखा था? भले वो उस समय न जान पाए कि ये भगवान है, लेकिन इतने सुंदर और आकर्षित थे कि परीक्षित जब बाहर आए तो बाहर आकर भी ढूंढ रहे थे, परीक्षा कर रहे थे, कहां है वो, कहां है वो, इसलिए उनका नाम आया परीक्षित। तो उसी तरह से यहां पर भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए पुलजाई अलवर कह रहे हैं कि वो दृश्य जो मैंने गर्भ में देखा था उन्हें कैसे भूल सकता हूं ऐसे मेरे प्रिय भगवान को। एक और स्तोत्र में वो कहते हैं कि भगवान को ऐसे आत्मा तरसती है भगवान के लिए, भक्त की आत्मा जैसे एक गाय का बछड़ा अपनी गाय के लिए, अपनी मां के लिए तरसता है। एक सुंदर उपमा है, दृष्टांत है। आपने जो गौशाला में गए हैं, हमारे मंदिर की गौशाला में गए होंगे, और जब दूध पीने का समय आता है बछड़े के लिए, तब आप देखिए बछड़ा कैसे करता है। आप उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, देखिए सीधे अपने मां के पास जाएगा। ठीक उसी तरह से भक्त की आत्मा जो है वो सीधे बहती है। इसके बारे में कई सुंदर सुंदर स्तोत्र अलग अलग शास्त्रों में है। कुंती महारानी की प्रार्थना है, कपिल देव की प्रार्थना है, भागवत में इसमें इसी बात को बताया गया है कि भक्त का जो आत्मा है, हृदय है, स्वाभाविक तौर से भगवान के चरण कमल की ओर बहता है, जिस तरह से गंगा जी पहाड़ों को पार करके भी समुद्र की ओर जाती है। और आगे वो चार मंदिरों का वर्णन करते हैं जिनमें भगवान अलग अलग मुद्राओं में हैं। तिरुवनगढ़ एक मंदिर, एक स्थान है, और इस मंदिर में भगवान खड़े हुए हैं। विम्रदान एक और शहर है जहां विष्णु मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं। यथोक्तकारी जहां पर पोलगई अलवार का जन्म हुआ, वहां भगवान लेटे हुए हैं। और तिरुकल्लूर में भगवान चल रहे हैं उस मंदिर में। तो अलग 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 मुद्राओं में हैं। तो पोलगई अलवार कह रहे हैं कि केवल ऐसे इन भगवान के अलग अलग मुद्राओं के बारे में चिंतन करते रहो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मतलब अलग अलग मंदिरों में जाकर उन्होंने अपने मन में इन सारे सुंदर विग्रहों को उन्होंने पकड़ के रखा है। आजकल हमें फोटो चाहिए, कैमरा चाहिए, है ना, भगवान के फोटो लेकर हम रखते हैं ताकि हम बार बार देख सकें। लेकिन ये तो कागज के ऊपर फोटो होता है, ये तो नष्ट होगा कागज एक ना एक दिन, कैमरे का रोल भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन इन अलवारों ने सिखाया कि किस तरह से हमें एक बार हम दर्शन करें, हमारे आंखों को कैमरा बनाकर भगवान के सुंदर रूप को हमारे हृदय में, हृदय को फिल्म का रोल बनाकर उनको वहां पर स्थित कर लेना चाहिए और उसके बारे में हमेशा चिंतन करना चाहिए। भूत मालवर एक प्रार्थना में कहते हैं कि आत्मा में, इस संसार के आत्माओं में और देवी देवताओं में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक तत्व को उन्होंने समझाया है कि देवतागण भी आत्मा होते हैं, जीव आत्मा होते हैं, वो भी भगवान नहीं है। फिर भूत मालवर कहते हैं, क्या ब्रह्मा जी जो कि बहुत तेजस्वी हैं, क्या वो भी रोज भगवान श्री कृष्ण श्री हरि का गुणगान नहीं करते? क्या शिव जी जिनका तीसरा आंख उनके कपाल में है, क्या हर रोज भगवान के पास नहीं जाते उनका आश्रय लेने के लिए? इस तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भगवान कौन है, भगवान और देवताओं के बीच में अंतर क्या है। और एक स्तोत्र में वो कहते हैं कि एक बार मैंने श्री कृष्ण को अपने स्वप्न में देखा और श्री कृष्ण के सुंदर कर कमलों में एक चक्र था, जिस चक्र से हमारे पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है। अब बाहर में दुनिया में लोगों को यह नहीं पता कि हमारे पुण्यों को भी नष्ट करना चाहिए। पापों की बात तो दूर है, पुण्यों को भी नष्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही भौतिक चीजें हैं, दोनों हमें इस संसार में जन्म लेने के लिए बाध्य करेंगे। पाप करेंगे तो हमें दुख भुगतना पड़ेगा नरक में या यहां पर, और पुण्य करने से हमें सुख का अनुभव होगा, भौतिक सुख का, इंद्रिय भोग का अनुभव होगा, स्वर्ग लोक में या तो इस पृथ्वी लोक में। लेकिन दोनों ही तरह से हम बद्ध अवस्था में हैं। भक्त को चाहिए कि वो भगवान के धाम में चले जाए जो कि इस संसार के परे है। तो भगवान श्री कृष्ण का चक्र, भूतमालवार कहते हैं, ये हमारे पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर सकता है। और वो आगे कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इस शक्ति में रमण करता हूं, इसमें मैं बहुत आनंद लेता हूं, जिस शक्ति से हमारे अंदर उन वृत्तियों का नाश हो सकता है जिन वृत्तियों की वजह से हमें बारंबार यहां जन्म लेकर दुख भुगतना पड़ता है, उस शक्ति में मैं रमण करता हूं। भगवान की शक्ति कितनी महान है कि हमारे उस संसार को भंग कर सकते हैं। और फिर अगर कोई व्यक्ति सोचे कि ठीक है ये तो सपना था, रात में देखा होगा, शायद काल्पनिक हो सकता है, तो इस बात को ठुकराने के लिए वो आगे कहते हैं कि मैंने दिन में भी भगवान को देखा, केवल रात में सपने में नहीं। और जब दिन में उनको देखा तो सपने में जिस स्पष्ट रूप से देखा था उससे ज्यादा स्पष्ट रूप में मैंने देखा भगवान को। गौतम अलवार भी जगह जगह इस चीज के ऊपर जोर देते हैं कि हमें कैसे भगवान का नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए, जिससे पाप भी नष्ट होते हैं और भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भी जागृत हो जाती है। और पे आलवार, उन्होंने कहा है कि जैसे पेगा आलवार ने बताया था कि अलग अलग मंदिरों में भगवान बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो पे आलवार कहते हैं मंदिरों की बात तो दूर है, भगवान मेरे हृदय में विराजे हैं और हृदय में आकर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो उनके ऊपर मैं चिंतन करता हूं। और फिर उनका अंतिम उपदेश हम सबके लिए, जिस उपदेश से हम इस कथा को समाप्त करेंगे, वो कहते हैं कि पूछो नहीं कि ये सही है या नहीं है, अच्छा है कि बुरा है, ये सब पूछताछ नहीं करो। क्या करो, केवल भगवान श्री हरि के चरण कमलों में आश्रय ले लो। जिन भगवान के वक्षस्थल में और चरण कमलों में मधु सुगंध वाले तुलसी के दल अर्पण किए हुए हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के चरण कमलों में आश्रय लेकर अपना जीवन सफल बनाओ। तो ये है आलवारों की, पहले तीन आलवारों की संक्षिप्त रूप में जीवनी, उनकी लीलाएं और उनके उपदेश। पे जय आलवार की जय, भूतम आलवार की जय, पे आलवार की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। अगले एकादशी को फिर हम अन्य आलवारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या आपके कोई प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं? कोलूर cool.